30/10/1966 का प्रातः क्लास चल रहा था। तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी, सीता का पति राम तो है, वो राम मनबुद्धि से सीता में तो निवास करता है, परंतु यहां मनुष्यों के तो बहुत नाम है, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, नारायण, लक्ष्मी नारायण, बहुतों ने नाम रख दिए है। एक के ही नाम एक ही श्लोक में अनेकों रख दिए, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। परंतु कोई को पता बिल्कुल नहीं है, ये एक के ही नाम एक ही श्लोक में अनेक प्रकार से क्यों दे दिए। तो ये बच्चे तो अभी समझते हैं कि बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत में, भारत कहने रहते हैं भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में ज्ञान कहा जाता है जानकारी को, और जानकारी कोई झूठी चीज की थोड़े ही, सच्चाई की जानकारी। तो सच्चाई में रहते सच्चा सोने को कहा जाता है, भारत भाई सोने की दुनिया थी ऐसे कहेंगे, क्योंकि गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता था। अभी भी गाते हैं ये भारत है, प्राचीन भारत है, सोने की झड़की थी, क्योंकि यहां सोने के महल थे, हद में भी महल होते हैं और वेद में भी महल किले को कहा जाता है, किला संगठन का होता है, तो संगठन के किले सच्चाई के थे, उनमें झूठी आत्माओं का अंश मात्र भी नहीं था। जो धोखेबाज निकल जाए, जो बाबा कहते हैं ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जो कोई भी विकारी इसमें पांव नहीं रख सकेगा। तो 5000 वर्ष पहले भी ये सोने रूपी सच्चाई के संगठन थे, महल थे, अभी फिर बनेंगे। क्योंकि उस संगठन को कहा ही जाता है स्वर्ग, वो स्वर्ग था, वैकुंठ था, हेवन था, पैराडाइज था। स्वर्ग कौन कहते हैं? है जो भारतवासी स्वस्थिति में स्थित होने में सिद्धस्त हो गए वो स्वर्ग कहते हैं। स्वस्थिति में गए परिस्थितियों को बस में कर लिया, पर प्रकृति को कहा जाता है। पांच तत्वों का ये शरीर का पुतला भी प्रकृति का पुतला है, ये तो नाशवान है, और इसमें आत्मा अविनाशी है। इसलिए कहते हैं कि अविनाशी स्व माने आत्मा की स्मृति में टिकना चाहिए। अंग्रेज लोग हेवन पैराडाइज कहते हैं, विन कहा जाता है जीतने को, अर्थात जो भारतवासी पहले हिंदू कहे जाते थे वो किसी धर्म में कन्वर्ट हो गए। कलयुग के अंतिम जन्म में आकर के भारत में जन्म लेते हैं, क्योंकि उनको बेहद का पाप आकर के फिर से क्रिश्चियन से कन्वर्ट करके देवी देवता धर्म में ले आते हैं। तो वो आत्माएं क्रिश्चियनिटी को जीत लेती हैं, इसलिए कहा हैविन विन करने वाले, पैराडाइज भी कहते हैं। अभी दुनिया को ये बात नहीं मालूम है, भारतवासी हिंदू ही कन्वर्ट होकर के और धर्म में गए, और जो कन्वर्ट हुए थे उनको ही कलयुग के अंत में भगवान बाप जब आते हैं तो और धर्मों से कन्वर्शन करके देवी देवता धर्म में ले आते हैं। तो देखो कोई कोई को ये बातें कुछ कुछ मालूम है। अभी देखो जिनको मालूम है उनको बाप ने बताया ना। अभी कहते हैं कि 3000 वर्ष क्राइस्ट के पहले ये भारत पैराडाइज था, ये अंग्रेजी में कहते हैं कि भारत पैराडाइज था, नई दुनिया थी। अभी मनुष्य नहीं जानते हैं, भारतवासी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते कि हम कहां से आते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, कुछ भी बिल्कुल नहीं समझते। अपनी देह को ही समझ लेते हैं कि हम देह हैं, कोई से पूछो आप कौन हैं, कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, जज हूं। अरे ये तो तुमने देह का नाम रखा हुआ है, क्या जन्म लेते थे? जन्म लेते तो नहीं थे, तो वास्तव में आप क्या हैं? कोई नहीं बताते हैं, क्योंकि अपने बाप को ही भूले हुए हैं, अपने आप को भूले हुए हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, जो भ्रकुटी के मध्य में स्थिर है, बड़ी पूरी कुटी है भ्रकुटी, जहां आत्मा रूपी राजा जो शरीर के ऊपर राज्य करने वाला है, शरीर की कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाला है, वो आत्मा बिंदु रूप में यहाँ बैठी हुई है। माताएं भारत में आज भी बिंदी लगाती हैं प्रकृति के मध्य में, कोई कोई पुरुष भी टीका लगाते हैं आत्मिक स्मृति में टिकने की निशानी। तो देखो बाप आकर बताते हैं कि ये निशानियां ही बताती हैं कि तुम आत्मा हो प्रकृति के बीच में रहने वाले। और गीता में भी मनुष्यों का जो बनाया हुआ सर्वोपरि ग्रंथ है उसमें भी ये बात आई है, अणोणियां समन स्मरित्य है, ये आत्मा अणु से भी अणु अति सूक्ष्म है, इसलिए आत्मा निराकार कही जाती है। आत्मा निराकार तो आत्मा का बाप भी निराकार, निराकार आत्माओं का बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। उस धाम को परम धाम कहा जाता है, बाप परम है, परम पिता है, तो उसका धाम भी परम है, ऊंचे से ऊंचा धाम है, मनुष्यों ने गीता में भी लिख दिया। जहाँ सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, भगवान कहते हैं मैं वहाँ का वासी हूँ। फिर जो गीता सर्वोपरि ग्रंथ है, सारी दुनिया के सभी धर्म वाले गीता को श्रेष्ठ मानते हैं, तो भगवान सर्वव्यापी कहाँ से हो गया? और ये तो सोचना चाहिए कि सर्वव्यापी को याद करेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी, या एक व्यापी को याद करेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी? एक को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी। असंख्यों को, अनगिनत को याद करेंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो जानते नहीं है कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा का बाप क्या चीज है। सांप का बच्चा सांप जैसा लंबा होगा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा डील डोल वाला होगा। तो आत्मा जो अणु रूप है, अति सूक्ष्म है, ज्योतिर्मय है, जिसकी ज्योति आंखों से दिखाई देती है, आदमी मुर्दा हो जाता है तो आंखों की वो ज्योति उड़ जाती है, आंखें बटन हो जाती हैं। तो वो अनुरूप आत्मा, उसका बाप भी अनुरूप है, परंतु आत्माएं जितनी भी हैं वो सब भोगी हैं। भोगी अर्थात सुख दुख भोगने वाली हैं, परंतु जो आत्माओं का बाप है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इसलिए तीनों काल का जाता है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब भूल जाती है। तो आत्माओं का बाप परमपिता, इस सृष्टि पर जब कलयुग अंत में आता है तो सत्य बात बता करके सत्य युग की स्थापना करता है। इसे पैराडाइज स्वर्ग कहा जाता है। वो परमपिता जो सभी आत्माओं का पिता है, और धर्मों में सृष्टि के आदि पुरुष एडम आदम, जैनियों का आदिनाथ, हिंदुओं का आदिदेव, इस सृष्टि के आदि पुरुष को सभी धर्मों में मान्यता है। परंतु बहुत पुरानी बात होने के कारण सब भूल गए कि वो आदि पुरुष ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, कि सृष्टि वृक्ष है मानवीय सृष्टि। जिसको गीता में भी बोला गया है स्वच्छ वृक्ष, ये उल्टा लटका हुआ है, ऊपर में बीज है, बीज से जड़ें निकलती हैं, जड़ों से तना निकलता है, और तने से डालियां निकलती हैं, डालियों से फल फूल और पत्ते निकलते हैं। आखिरीन वही बीज उस वृक्ष में फिर प्रत्यक्ष हो जाता है, और वही बीज रूपी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच परम पाटधारी हीरो पाटधारी परमात्मा इति उदाहरत है, जैसे गीता में बोला है। परमात्मा कहा जाते हैं, वो बीज आदि में ऐसा पुरुषार्थ करता है कि पुरुषार्थ के आधार पर ही अपने तन मन धन समय संपर्क संबंधियों की बाजी लगा करके सब कुछ ईश्वर परम पिता के लिए अर्पण कर देता है। जो कहते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना माने बीज, नंबर बार तो होते ही है, तो मनुष्य सृष्टि का बीज है। देह अभिमान की मिट्टी में मिलकर के खाक बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, सदा काल के लिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में गुप्त हो जाता है। ऐसे नहीं कि उस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो चार अवस्थाएं होती हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उन चारों अवस्थाओं में उसका अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व तो होता है परंतु गुप्त पार्ट बजाता है, कोई पहचान नहीं सकता। हाँ, भगवान बाप जब आते हैं और उस परम पुरुष कहो परम ब्रह्म कहो परमात्मा कहो, उसमें प्रवेश करके जब पार्ट बजाते हैं तो उसे पहले पहले आप समान बनाए देते हैं। आप समान अर्थात विश्व कल्याणकारी। शक्ति को ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। भारत में उसे एक सत्य के नामाचार रखने के लिए घर घर में आज भी सत्यनारायण की कथा होती है। भगवान बाप आते ही है नर को नारायण बनाने के लिए। नाम पड़ता है नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसे कहा ज्ञान जल में ही घर है, ज्ञान में उसी स्टेज को प्राप्त करता है जिस स्टेज में स्वयं परमपिता हैं, परंतु सदाकाल के लिए नहीं। भले सदाकाल के लिए नहीं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जब तक भी आदि से अंत तक पार्ट बजाता है, वो हीरो पार्टधारी होने के कारण श्रेष्ठ पार्ट ही बजाता है। जो अच्छे थे अच्छे हैं उनमें भी हीरो, और जो इस दुनिया में बुरे थे बुरे हैं उनका पराभव करने के लिए उनका भी हीरो। इसलिए भगवान बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, अर्थात अच्छाई में भी बाप और बुराई में भी बाप है। इसलिए बताया कि शिव बाबा को ही राम कह देते हैं, शिव बाबा किसे कहा जाता है, साकार निराकार के मेल को। शिव बाप कहें तो सिर्फ निराकार, तो सिर्फ निराकार राम है या साकार निराकार का मेल राम है, वो ही राम कह देते हैं। और रावण जिसको 2500 वर्ष हुआ उसको रावण कह देते हैं। अभी मैंने कभी संगम युग में अभी उन राम को राम कहना नहीं चाहिए, अभी कहना चाहिए है, अभी कहना चाहिए, अभी राम कहना चाहिए, क्योंकि काम के आधार पर नाम होता है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं किस आधार पर है, काम के आधार पर नाम है। और राम का काम ही है रमिते योगिनो यस्मिनी इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं प्रसन्न रहते हैं, कहीं में रमण करते हैं?
इंद्रियों के सुख में
नहीं, अति इंद्रिय सुख में रमण करते हैं, उसे राम कहा जाता है। तो बताओ, अभी वर्तमान संगम युग में राम वाली जो आत्मा है, इसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, बलि गुप्त पार्ट बजाते हैं। अभी प्रत्यक्ष है या गुप्त है? अभी गुप्त पार्ट बजाते हैं। तो भले गुप्त पार्ट बजाते हैं, परंतु ये भी बताया कि तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो तुम बच्चे जिनको कहा, उनमें राम वाली आत्मा है या नहीं है? तो जितना याद करती है उतना ही शिव बाप उसके साथ हैं या लगातार साथ हैं? है लगातार साथ। जब बता दिया जितना तुम याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये तो हो सकता है कि मनुष्य सृष्टि के 500-700 करोड़ जो मनुष्य रूपी प्रत्यय हैं, उनके बीच में वो सबसे जास्ती याद करता हो। परंतु अभी ये तो नहीं कहेंगे कि सदाकाल याद करता है, पढ़ता है, सोता नहीं है, है? सोता है। अभी तो नहीं कहेंगे कि निद्रा की तो बन गया, अतीन्द्रिय सुख देता है कि इंद्रियों का सुख देता है? है अतीन्द्रिय सुख देता है। अभी भगवान बाप तो कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो ये 16,000 गोप गोपियां गाई हुई हैं, इनसे पूछो। अभी वो संख्या दिखाई पड़ती है? दिखाई पड़ती है, है? नहीं। यज्ञ के आदि में ये कहते थे कि अमेरिका के अखबारों में भी निकल गया कि कलकत्ते का एक जौहरी कहता है कि 400 मिली है, मुझे 16,000 चाहिए। तो देखो, वो संख्या तब भी नहीं थी जिसका शास्त्र में गायन है, और वो संख्या अभी भी नहीं है। तो साबित हो जाता है कि भगवान ने जो चरित्र किए मनुष्य तन में आकर के, उन चरित्रों का यादगार भागवत बनी है। ढेर की ढेर भागी भगवान के पीछे, भगवान के पार्ट के पीछे, परंतु अभी राम को राम नहीं कहेंगे। कहेंगे कहेंगे, हाँ, अगर राम नहीं है तो क्या है? रावण। सीधी सी बात, सारी दुनिया रावण संप्रदाय, तो सारी दुनिया में राम की आत्मा नहीं है? नहीं है। अरे है या नहीं है? अभी राम भी क्या है? रावण है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ भगवान बाप ने दिखाया है उसमें 10 जड़े हैं, और दुनिया के 10 ही धर्म हैं मुख्य मुख्य। उन 10 धर्मों में तमो प्रधानता आ चुकी है या सात्विकता है, तमो प्रधानता आ गई। सबसे जास्ती तमो प्रधान धर्म कौन सा बना है? है? हाँ, जो सबसे जास्ती पुराना वो सबसे जास्ती तामसी। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे वो ही द्वैतवादी द्वापर युग से इंद्रियों से अपवित्र होने लगे, इसलिए अपन को देवता नहीं कह सके, क्योंकि देवताओं की तो पवित्रता के आधार पर पूजा होती है, मंदिर बने हुए हैं, और ये तो इंद्रियों से खास करके भ्रष्ट इंद्रियों से पतित होने लगे। तो न पतित होने वालों में पहला नंबर किसका होगा? है? कह तो दिया, भगवान बाप आते हैं तो जो पहला नंबर ब्राह्मण बनता है सो पहला नंबर देवता बनता है, जो पहला नंबर देवता बनता है वो ही पहले नंबर का क्षत्रिय बनता है, जो क्षत्रिय बनता है द्वापर युग में पहले नंबर का वो ही क्या बनेगा? वैश्य बनेगा। तो पहले पहले विशेष कौन बना है? रामली आत्मा। कैसे कह जाना तो बड़ा आसान है, रामली आत्मा। अब कोई पूछे कैसे तो बताया, देखो मुसलमानों में भी इस्लामियों में भी ये मानते हैं कि अल्लाह मियां ने जब जन्नत बनाई तो आदम और हव्वा को ये हिदायत दी कि ये जो बॉडी रूपी बगीचा है, बॉडी माने शरीर रूपी बगीचा है, इसमें बीज का फल नहीं खाना। उस समय तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, बहुत जन्मों के बाद भूल गए, और भूलने वालों में भी पहले ईव पहले हवा का नाम आता है या आदम का नाम आता है? हवा का नाम आता है। निश्चित है कि भगवान बाप जब आते हैं तो जो आत्मिक स्थिति का पक्का पक्का पुरुषार्थ करते हैं उनमें देवान ज्यादा होगा या कम से कम होगा? है? कम से कम होता है। देवान कहो अहंकार कहो देह का, तो देह का अहंकार होने के कारण वो आत्मिक स्थिति ज्यादा रहती है, परंतु देवान में भी रहने वालों की कोई स्थिति होती है या नहीं होती है? है? जो आत्माभिमान में आगे जाता है वो सारे जगत का पिता कहा जाता है, जगत पिता। जगत में देवात्माएं भी हैं, क्षत्रिय धर्म की आत्माएं भी हैं, इस्लाम धर्म भी हैं, बौद्ध आदि सभी धर्म। आत्मिक स्थिति में रहने वाला दूसरों को दुख देने का प्रैक्टिकल कर्म करेगा? करेगा नहीं करेगा? तो बाबा भी यही कहते हैं, भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं वो भी यही कहते हैं कि शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं, कह देते हैं शंकर द्वारा विनाश। परंतु शंकर करता है क्या? करना डरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के करना डरना होता है? तो शंकर को तो याद में बैठे हुए मोस्टली दिखाते हैं, और याद में रहना कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करना नहीं कहा जाता। ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म करना नहीं कहा जाता। तो बताया कि याद में जो सदैव रहेगा वो याद की शक्ति से जो दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं उनकी बुद्धि को घुमा सकता है या नहीं घुमा सकता है? है? वो वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया के विनाश के लिए एटमिक एनर्जी तैयार कर दी, तैयार तो कर दी परंतु उसका पूरा यूज करने के लिए कोई में क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अंजाम देखा है द्वितीय विश्व युद्ध में। उस समय 20-20 मेगावाट की बम्बियां थी और उनका इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि आज भी हिरोशिमा नागासाकी में हॉस्पिटल्स में पड़े हुए कराह रहे, उनकी हालत देखी नहीं जाती है।
तो डरते हैं हमारी भी यही हालत हो जाएगी।
वो यूज करने में डरते हैं। अब बताओ भारत में जो गायन है वो कौन से देवता के नाम पर गायन है? बम बम है, हर हर बम बम, ये बमों का विस्फोट कराने वाला है, खुद नहीं करता है लेकिन उन वैज्ञानिकों की बुद्धि को योग बल के द्वारा प्रेरित कर देता है और वो एटमिक एनर्जी यूज करने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। परंतु विनाश क्या एटमिक एनर्जी से ही होता है? है? होता है विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। पवित्रता कैसे आती है? मनुष्य मात्र तो इस दुनिया में कलयुग के अंत में अपवित्र बन जाते हैं। यहाँ के तक के भगवान बाप कहते हैं तुम बच्चों से भी सारे दिन में 10-20-50 भूलें तो इन आंखों से जरूर होती है व्यभिचार की। तो बताओ जो भगवान बाप के बच्चे बने बैठे हैं, दुनिया में आवाज फैलाते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं व्यभिचारी बनने के, तो वो गिरती कला की शूटिंग कर रहे हैं या उड़ती कला की शूटिंग कर रहे हैं? दुनिया अभी भी गर्त में जा रही है, परंतु ऊंचा उठने के लिए भगवान बाप ने कोई युक्ति दी है नहीं दी? क्या है? अपन को आत्मा समझ है? अपन को मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा समझ है? मुझे भगवान बाप को याद करो, शिव को याद करो। शिव माना ही कल्याणकारी। कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो ही शिव है और जो सच्चा है वो ही सुंदर है। ऊपर से चेहरा बड़ा सुंदर है लेकिन कर्मों में कर्मेंद्रियों में व्यभिचार भरा हुआ है, तो शिवालय बनाने वाला हुआ या वैश्यालय बनाने वाला हुआ? वैश्यालय बनाने वाला हो गया, सुंदर कहाँ हुआ? सुंदर तो श्रेष्ठ को कहा जाता है और श्रेष्ठ श्री को कहा जाता है। ये जोड़ी है, श्री माने लक्ष्मी और श्रीनाथ माने है लक्ष्मी का नाथ नारायण। दुनिया की सुंदर से सुंदर मूर्तियां यही दो हैं और यही सत्य है। इनमें एक मूर्ति श्री माने लक्ष्मी जन्म जन्मांतर विरुद्ध धारण करने वाली है, उस विरुद्ध का संगम में शूटिंग हुई है। वरों शंभु न तो रहो कुमारी, तो उसमें तो जन्मजात पवित्रता के अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। उसे ज्ञान का और योग का वो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है जो लंबे समय का पुरुषार्थ हो। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने भी बोल दिया, वो ज्ञान योग सीखने के लिए बाप के सन्मुख आज से ही आ जाती है या अंत में आती है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, क्योंकि उसे पवित्रता के लिए लंबे समय का योग धारण करने की दरकार है ही नहीं। ज्ञान की विस्तार में इतना जाने की भी दरकार है ही नहीं, इसलिए वो अंत में आती है, लास्ट में आती है और लास्ट आने पर भी पवित्रता की जोर से फास्ट जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि लास्ट सो फास्ट माने जो भी लास्ट में आएंगे सब फास्ट जाएंगे। और विदेशी और धर्म वाले तो सब लास्ट में ही भगवान को पहचानेंगे, तो क्या वो फास्ट पुरुषार्थ करके देवता बन जाएंगे? बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो लक्ष्मी को तो गौरी कहा जाता है। क्या? जो भी नौ देवियों की पूजा होती है उनमें सबसे पहली पूजा किसकी होती है? गौरी पूजन होता है। और उसके मुकाबले एक देवी ऐसी भी है जिसकी लास्ट में पूजा होती है। कौन है? है महाकाली। काली को चित्रों में भयंकर काला दिखाई दिया है। चित्र की सुबात की यादगार है, चरित्र की यादगार। क्या चरित्र किया जो काला चेहरा दिखाई दिया है? क्या चरित्र किया? उसका नाम ही है जगदम्बा। सारे जगत की अम्बा ऐसी आत्मा है जो इस सच्चरूपी रंगमंच पर सभी धर्मों की अम्बा बनती है, सभी धर्मों को जन्म देती है, सभी धर्म वालों को अपनी गोद में खिलाती है। सभी धर्म वाले जो दिल्ली रूपी जगदम्बा है उस दिल पर राज्य करते हैं, ऐसा भी राज्य करते हैं जो अच्छी तरह से खून खराब दिखाते। दिल्ली में जैसे नादिर शाह ने आकर के खून की नदियां बहाई थी, ऐसे बच्चे भी उस जगत माता से जन्म लेते हैं। मन सब धर्म की आत्माएं जगदम्बा कहो उस जगदम्बा के मस्तक में प्रवेश करने वाला ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहो, पार्ट बजाता है। हर आत्मा दुनिया की पहले सात्विक पार्ट बजाती है और अंत में तामसी पार्ट बजाती है। कोई आत्मा ऐसी होती है जो आदि में भी सात्विक पार्ट बजाती है और द्वैतवादी द्वापर युग से भी धीरे धीरे नीचे उतरती है और अंत में भगवान बाप जब आते हैं तब अति की तमो प्रधान बनने का भी पार्ट बजाती है। जैसे इस्लाम धर्म का इब्राहिम, वो तो आता ही है रजो प्रधान युग में, लेकिन जिसने आता है वो आधार मूर्त आत्मा तो सतयुग से ही जन्म लेती हुई आती है, क्योंकि नियम है जितना बड़ा धर्म पिता उतना बड़ा ऊंचे रथ का आधार लेता है। जैसे भगवान बाप, उसके लिए मुसलमान लोग भी मानते हैं अल्लाह अव्वलदीन, अल्लाह माने ऊंची से ऊंचा, अव्वलदीन माने अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करने वाला। तो दुनिया का जो अव्वल नंबर पार्टधारी हीरो पार्टधारी राम वाली आत्मा है उसमें प्रवेश करता है। ऐसे ही दुनिया का दूसरे नंबर का धर्म पिता कौन? इब्राहिम। तो जो इब्राहिम दूसरे नंबर का धर्म पिता है और धर्मों के मुकाबले जास्ती पावरफुल है विदेशियों और विधर्मियों के बीच में, वो धर्म पिता साधारण रथ में प्रवेश करेगा, लास्ट नंबर वाले में प्रवेश करेगा या श्रेष्ठ में ही प्रवेश करेगा? दूसरे नंबर का धर्म पिता है तो दूसरे नंबर के नारायण में प्रवेश करता है। और जिसमें प्रवेश करता है उस नारायण को भी जन्म देने वाली आत्मा उसका बाप है। बाप माने बीज, वो बीज राम बाप के साथ वाले बीज है। क्योंकि तो भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा मानसी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। उस मानसी सृष्टि में बड़े से बड़े बच्चे ब्रह्मा के चार पुत्र गाये हुए हैं, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। परंतु सनत कुमार सबसे छोटे होते हुए भी ज्ञान में सबसे तीखे थे। और भगवान बाप कहते हैं कि जो ज्ञान में बड़ा वो ही बड़ा ठहरा। ज्ञान में जो बड़ा होगा, ज्ञान माने जानकारी, पहली पहली जानकारी अपनी और अपने बाप की, तो इसमें जो बड़ा है वो बड़ा बच्चा भारतीय परंपरा में देव देव महादेव कहा जाता है। और सनत कुमार को भी योगीश्वर नाम का टाइटल दिया जाता है, योगियों का ईश्वर। अर्थात जो सनत कुमार है वो ही त्रिमूर्ति में शंकर वाली आत्मा है। और वो शंकर वाली आत्मा ज्ञान में त्रिनेत्री है, तीसरा नेत्र धारण करती है जिसे शिव नेत्र कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र, वो ज्ञानी तो आत्मा जिनके लिए भगवान बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। परंतु उनको शास्त्रों में कहीं बड़ी बड़ी सभाओं में ज्ञान देते हुए दिखाया गया है, है? नहीं दिखाया गया, क्योंकि ज्ञान में रत रहना, ज्ञान की रोशनी में लगा रहना यही बड़ा काम नहीं है। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी ले ली लेकिन प्रैक्टिकल में धारण नहीं की तो उसे ज्ञान का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। वास्तव में गीता में तो बोला है सांख योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, जो जानकार हैं, सांख्य माने संख्याओं का आख्या करने में, ज्ञान की व्याख्या करने में जो टीके हैं वही सांख्य के व्याख्या का है। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या, संग माने साथ, आख्या माने व्याख्या। माना व्याख्या के साथ जो ज्ञान सुनाया गया वो सांख्य कहा गया, परंतु गीता में ये भी कहा है ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ज्ञान माने योग विशेष है। और भगवान बाप भी बच्चों को यही बताते हैं क्या कि तुम्हारे चार सब्जेक्ट हैं ज्ञान योग धारणा और सेवा, लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है योग को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, क्योंकि जो योग में पास हो जाएगा भले तीनों सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो भी उसे पास ही माना जाएगा। जैसे बहुत बांधेली माताएं हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं ज्ञान धारणा नहीं करती हैं, उतना करती हैं नहीं करती। जब उतना ज्ञान धारण नहीं कर सकती तो कहती है मैं ज्ञान सुना भी नहीं सकती हूं, मुझे बोलना नहीं आता। ठीक है, माना सेवा नहीं कर सकती है, धारणा भी नहीं कर सकती ज्ञान की, क्योंकि याद नहीं रहता है। परंतु उनसे पूछा जाए तुम वानप्रस्थी हो गई, 60 वर्ष की आयु हो गई, और बाबा भी कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था में अच्छा पुरुषार्थ होता है, तो उन बूढ़ियों से जब पूछा जाता है कि ज्ञान भी नहीं धारणा भी नहीं सेवा भी नहीं तो क्या भगवान की याद अच्छी आती है, तो कहीं हाँ याद तो आती है। तो देखो याद में तीखी चली जाती है, और भगवान बाप भी कहते हैं जो अंत में याद में तीखा जाएगा उसके अंदर बाकी तीनों ही विषय परिपूर्ण हो जाएंगे। याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास ही माना जाएगा।